मेरे अजीज दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज फरवरी का पहला दिन है, 1 फरवरी 2017, और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और मित्रों, स्वागत करने के बाद आप सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आप सबको, आप सब की ओर से, यानी कि अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से भी और अपनी ओर से। और मित्रों, यह शुभकामनाएं हैं वसंत पंचमी के खूबसूरत अवसर पर। मित्रों, आज वसंत पंचमी है और वसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर मुझे लगा कि क्यों नहीं वसंत पंचमी के माध्यम से ही जिंदगी के बारे में कुछ बात कर ली जाए, क्योंकि वसंत पंचमी है क्या? वसंत पंचमी मूलतः जिंदगी ही है, प्रकृति की जिंदगी। तो आइए दोस्तों, वसंत पंचमी पर कुछ बातें करते हैं। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि हमारी जिंदगी की जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी के उत्तर, समाधान कह लीजिए, समस्याओं के समाधान या समस्याओं के उत्तर प्रकृति के पास मौजूद हैं। मुश्किल यह है कि हम प्रकृति से बातचीत नहीं कर पाते, प्रकृति के साथ हमारा संवाद खत्म हो गया है। हमने अपने को प्रकृति से काट लिया है, तो फिर प्रकृति से हमारा संवाद हो कैसे सकता है? क्योंकि जो कॉर्ड थी हम दोनों के बीच बातचीत करने का, जो माध्यम था, वह शायद टूट गया है, खत्म हो गया है। और इसीलिए प्रकृति भी न तो हमारी सुनती है, और चूंकि सुनती नहीं है तो फिर उत्तर देने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मित्रों, ये जो वसंत है, आप अगर गीता उठा करके देखेंगे तो उसमें कृष्ण प्रकृति के लगभग लगभग 30-32 उपकरणों को लेकर के और बताते हैं कि मैं ये हूं। हाथी में ऐरावत हूं, तो पर्वतों में हिमालय नगाधिराज हूं, इस तरह की बातें करते हैं। और उसी दौरान वो एक बात कहते हैं, और वह है ऋतुओं में मैं वसंत हूं, ऋतुओं में मैं वसंत हूं। मित्रों, ये भारत की अद्भुत विशेषता है कि मौसम तो भले ही हम कहें कि तीन है, ठंड, बरसात और गर्मी, सामान्य तौर पर तो दो ही मानी जाती हैं, गर्मी और ठंड, है ना। जो बरसात है वो सच पूछे तो गर्मी का हिस्सा है, लेकिन भारत में ऋतुएं अगर आप देखेंगे तो 6 हैं। बीच बीच के दो मौसम के बीच का, दो ऋतुओं के बीच का जो संक्रमण काल होता है, उसको भी हमने ऋतु के तहत माना है, और वसंत उसमें एक ऋतु है। दोस्तों, दरअसल वसंत है क्या? आप देखेंगे कि वसंत मूलतः, मुझे ऐसा लगता है कि संतुलन का दूसरा नाम है। वसंत का मतलब है बैलेंस। आप देखिए कि अब भले ही वो ऋतु चक्र गड़बड़ होने के कारण आपको वैसा महसूस न हो रहा हो, लेकिन ठंड जा रही है, कड़कड़ाती हुई ठंड जा रही है और गर्मी आ रही है, यानी कि अभी नर्म सर्दी है या नर्म गर्मी है, जो भी इसे आप नाम देना चाहे, क्योंकि इस धरती पर जो मौसम में जो बदलाव होते हैं, जिस बदलाव को हम महसूस करते हैं, अब वो तो कर्क रेखाओं के आधार पर होता है, सूर्य की दूरी के आधार पर होता है, तो इसीलिए सब जगह हम एक जैसा तो महसूस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आम तौर पर यह माना जाता है कि वसंत का मतलब है सर्दी का जाना और गर्मी का आना, यानी कि बिल्कुल संक्रमण का काल, जब एक जा रहा है और एक आ रहा है, यानी कि हम मौसम के दहलीज पर हैं। तो फ्रेंड्स, क्या कारण है कि कृष्ण ने अपने को वसंत ऋतु कहा? उन्होंने बरसात क्यों नहीं कहा, जहां की वो झाए 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 बारिश हो रही है, वो बरसात है जिससे कि पूरी की पूरी खेती खेती निर्भर है, और वो तो कृषि युग था, और कृषि युग में जो जीवन का आधार भी था वो खेती ही थी, तो वो बहुत अच्छा होता कि वो कहते कि ऋतुओं में वर्षा ऋतु हूं, और फिर उनका तो जन्म भी झमाझम बरसते हुए बारिश में हुआ था, खुद ग्वाल बाले भी थे, उनको भी तो अपने गाय बैलों के चारे के लिए वर्षा की जरूरत थी, लेकिन वो कहीं नहीं कहते कि मैं वर्षा ऋतु हूं, वो कहते हैं कि मैं वसंत हूं। तो कोई तो मतलब रहा होगा इसका, कुछ तो कहना चाह रहे होंगे कृष्ण इसके माध्यम से। तो आइए हम उसे ही देखते हैं दोस्तों। जब हम फॉरेन में जाते हैं, आप फॉरेन में आप सुनेंगे तो वो वसंत ऋतु को बहुत इंपॉर्टेंट ऋतु मानते हैं। उसको उन्होंने नाम दिया स्प्रिंग। देखिए उसका नाम है स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन है ये। स्प्रिंग का क्या मतलब है, आप डिक्शनरी उलटिए तो उसमें स्प्रिंग का मतलब आपको दिखाई देगा स्रोत, सोर्स। कहीं दिखाई देगा झरना, इस झरने को भी स्प्रिंग कहते हैं। कहीं दिखाई देगा आपको फूटना, स्प्रिंग हो गया, मतलब कि उससे फूट पड़ा, जमीन से स्प्रिंग हो, पानी फूट पड़ा, आपके पौधों से कोपले फूट पड़ रहे तो स्प्रिंग आउट, वहां से निकल रही है। अब यहां पर फिर आपको एक नई चीज दिखाई देगी। तो क्या वसंत किसी चीज का स्रोत है? अगर स्रोत है तो फिर किसका स्रोत है? अंग्रेजी में झरना को वसंत क्यों कहा गया? वेस्ट ने वसंत ऋतु को अपने यहां की श्रेष्ठ ऋतु क्यों माना? आप टूरिस्ट वालों से पूछे, टूरिज्म वालों से, तो वसंत ऋतु को, हमारे यहां का ही वसंत वहां का वसंत नहीं होता है ना, उनका अपने ढंग से वो वसंत ऋतु आती है। तो मित्रों, इसका जो सारा का सारा जो कमाल है, देखिए अब मैं जीवन की बात कर रहा हूं, वो सारा का सारा जो कमाल है मित्रों, वो संतुलन का कमाल है। न अधिक गर्मी न अधिक ठंड, और जहां भी संतुलन होगा वहां श्रेष्ठता होगी, सर्वश्रेष्ठता होगी। श्रेष्ठता ही नहीं होगी, वहां सर्वश्रेष्ठता होगी। और जहां श्रेष्ठता या सर्वश्रेष्ठता होगी वहां क्या होगा? वहां सृजन होगा। वो जो वसंत है, जो संतुलन है, वह बेसिकली सृजन का स्रोत है। वहां से कुछ नया निकलेगा, कुछ नया फूटेगा, कुछ नया रचा जाएगा, कुछ नया पैदा होगा। तो उसको वेस्ट ने कहा स्प्रिंग, कुछ नया निकलना। मित्रों, क्या हम इस व्याख्या को अपने जीवन पर लागू कर सकते हैं? कृष्ण ने कहा कि मैं वसंत हूं। आप पूरे के पूरे जीवन भर कृष्ण की भूमिका को देखिए, मतलब कृष्ण के जीवन भर की भूमिका को देखिए, आपको कहीं भी कृष्ण उद्वेलित होते हुए दिखाई नहीं देंगे, परेशान होते हुए दिखाई नहीं देंगे। यहां तक कि वो अपने उद्दाम आनंद के क्षणों में भी अपना वो संतुलन बनाए रखते हैं, और यहां तक कि जब गांधारी युद्ध समाप्त होने के बाद जब उनको श्राप देती हैं, तब भी कृष्ण उस श्राप को उतने ही संतुलन के साथ स्वीकार करते हैं कि हां मां, मुझे तुम्हारा यह श्राप स्वीकार्य है। वो उद्वेलित नहीं होते, उत्तेजित नहीं होते। वो मालूम है कि मैं अगर शांति प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के यहां जाऊंगा तो दुर्योधन मुझे बंदी बना लेगा। इसके बावजूद वो वहां जाते हैं, अपना संतुलन नहीं खोते, घबराते नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमारे अंदर भय आता है हम अपना संतुलन खो देते हैं। यदि वो रास भी रचा रहे हैं, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार रास रचाया है, बस ये मत समझिएगा कि कृष्ण सिर्फ रोज ही रास रचाते रहते थे, शरद पूर्णिमा की एक रात उन्होंने रास रचाया। उनका संतुलन देखिए कि वो सबके साथ है। इसका अर्थ क्या है कि कृष्ण सबके साथ हैं, यानी कि एक के साथ होते हुए भी वे सबके साथ हैं। मित्रों, हम अगर 10 लोगों के बीच में बैठे हुए हों तो क्या सच में हमारे अंदर यह क्षमता है कि हम 10 को संतुष्ट कर सकें, 10 पर ध्यान दे सकें, 10 के साथ बातचीत कर सकें, और किसी को भी यह न लगे कि हम किसी पर्टिकुलर को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं? कृष्ण यही करते हैं, एक के साथ होकर सबके साथ है। संतुलन की प्रक्रिया देखिए, वो कृष्ण जो उम्र में कम है, बहुत छोटे से बालक है, और जब कालिया नाग निकलता है तो आप सोचिए कि उसके फन पर, कालिया नाग के फन पर, कल्पना कीजिए कि फन पर कितना स्पेस है, उस कालिया नाग के फन पर, और नृत्य कर रहे हैं और वो फन डोल रहा है, स्टेज की तरह वो स्थिर नहीं है, कालिया नाग तो डोल रहा है ना, उसका फन डोल रहा है, और फन पर थोड़ी सी जगह है, और उस थोड़ी सी जगह पर कृष्ण बैठे हुए नहीं है, कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण भी डोल रहे हैं, अद्भुत संतुलन, ये कैसे संभव हो रहा है? मित्रों, जब आप सोच कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, अगर कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ऋतुओं में वसंत हूं तो उनको उनके कहने का कुछ मतलब है, और मतलब ये है कि जिंदगी में हर तरह की परिस्थितियां आई, अच्छी बुरी अलग अलग, दोनों की चरम सीमाएं, इसके बावजूद मैं बना वसंत ही रहा। मैंने अपना संतुलन कहीं नहीं खोया, कभी नहीं खोया, थोड़ा भी डगमगाया नहीं। और शायद कृष्ण के इसी विशेषता के कारण हमने उन्हें ईश्वर माना। राम क्या करते हैं, जो मर्यादाएं हैं, जो मर्यादाओं का पालन करेगा, याद रखिए वो उसका संतुलन गड़बड़ होगा ही नहीं। संतुलन गड़बड़ ही तब होता है जब हम मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। नदी, बहती हुई नदी जब तटों की मर्यादा को तोड़ देती है तो वो बाढ़ बन जाती है, मर्यादा का उसने उल्लंघन कर दिया। मैं अगर नौकरी में हूं और नौकरी में रहते हुए कोई गलत काम करूंगा तब मैं डरूंगा, और जैसे ही डर मन में आता है संतुलन खत्म हो जाता है। और मैं अगर नियम कानून के तहत रहता हूं तो इसका मतलब है कि मैं नियम कानून की मर्यादा में रह रहा हूं, तो मुझे किसी का डर ही नहीं, और किसी का अगर डर नहीं है तो मेरा संतुलन बना रहेगा। दोस्तों, मेरी इस बात को आप सब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बाद का जो डेली ऑडियो था उससे जोड़कर देख सकते हैं कि मर्यादा वो चीज होती है जो संतुलन को बनाए रखती है। और ये जो वसंत आया है ये प्रकृति की मर्यादा है। सूरज अपने आदर्श स्थिति में चमक रहा है, पृथ्वी उसकी ऊर्जा को बिल्कुल आदर्श स्थिति में स्वीकार कर रही है, और जब दोनों ही आदर्श स्थिति में हैं तो वह आदर्श स्थिति इस जगत की समस्त वनस्पतियों के लिए एक आदर्शतम स्थिति का निर्माण करती है और रचना शुरू हो जाती है। अब देखिए फूल खिलने शुरू हो गए, तरह इतने रंग के फूल, फूल तो हमेशा खिलते रहते हैं लेकिन इतने रंग के और इतने किस्म के फूल आपको किसी भी ऋतु में दिखाई नहीं देंगे जितनी वसंत में है, क्योंकि वसंत रचता है, नए नए खिलाता है, नए नए बनाता है। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये वसंत हम सब अपने अंदर ले आए, यानी कि यथासंभव संतुलन ले आए, हम भी रचने लगेंगे, नया कुछ करने लगेंगे और अंदर से हमारे आनंद का झरना फूट पड़ेगा और फिर जिंदगी कैसी हो जाएगी, अपने आप में वसंत हो जाएगी। और जब जिंदगी वसंत हो जाएगी तो हम कहीं ना कहीं कृष्ण के छोटे से टुकड़े तो हो ही जाएंगे। तो दोस्तों, आज वसंत को आधार बनाकर मैंने कुछ विचार आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इन विचारों के साथ बेहतर होगा कि आप सब भी अपने विचार मिलाएं, और फिर केवल मिलाएं ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उसे शामिल करने की भी कोशिश करें। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।